ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की कृपा से 50 साल से अधिक इस्कान के अंतर्गत भगवत गीता यथारूप भगवत वाणी भगवान श्री कृष्ण के मुख के उसके माध्यम से विश्व कल्याण का कार्य हो रहा है। लोगों को सुख शांति और भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति प्रदान की जा रही है प्रभुपाद की कृपा से। और आज यहाँ हिंद महासागर के रमणीक मॉरिशस द्वीप के इस तुलसी भवन में मनमोहन प्रभु और सब भक्तों ने मिलकर सत्संग का आयोजन किया है भगवत गीता के। आप सबका स्वागत है। भगवत गीता भगवान का गीत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में हृदय गीता मेरा दिल है। भगवान का हृदय है गीता, उसको देते हैं जिससे प्रेम करते हैं। तो दसवें अध्याय के ऊपर रात चर्चा हो रही थी। दसवें अध्याय में अर्जुन को भगवान कहते हैं कि मैं तुमसे तुम मुझे बहुत प्रिय हो, प्रिय मान आया तब हित्य कामया, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो मैं आपका हित की कामना रखता हूं कि आपकी भलाई कैसे हो। इसलिए दोबारा एक बार सुना रहा हूं भूय एव शरणों में, एक बार और सुनो। अपने जो प्रेमी होते हैं उसको बच्चों को प्रेम से कहते हैं एक बार और सुनो, अच्छी तरह समझ लो। हाँ समझ गए ना, एक बार और सुन लो। तो और प्रेम जिससे होता है उसके हित के लिए उसको बार बार समझाया जाता है। और भगवान ने क्या समझाया, बोला देवता मुझे नहीं जानते हैं, न मे विदो सुरगणा न महर्षि। देवता तो चलो कोई बात नहीं, स्वर्ग के सुख में लगे हुए हैं, महर्षि तपस्या करते हैं वो तो जानते होते हैं। बोला महर्षि भी मुझे नहीं ना जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? अहम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्व, ये देवताओं को मैंने पैदा किया, महर्षियों को मैंने पैदा किया, मेरे को कैसे जानेंगे? कौन जान सकता है? जो मुझे अजन्मा जानता है, जो मुझे जानता है कि मैं अजन्मा हूं। मैं अवतार तो लेता हूं, लेकिन मेरा अवतार लेना अलौकिक है, ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। ये नहीं जो जानता है वो मेरे को नहीं जान सकता है। तो भगवान आपको आखिर कौन जान सकते हैं? तो भगवान ने चार श्लोक बोले हैं दसवें अध्याय में, भगवद्गीता के दसवें अध्याय में चार श्लोकों को चतुर्श्लोकी भगवद्गीता बोलते हैं। चार श्लोकों में सीड रूप भगवद्गीता, उसके पहले श्लोक में भगवान ने कह दिया कि कौन मेरा भजन कर सकता है। आप लोग इसका उच्चारण कीजिए मेरे साथ, अहम सर्वस्य परभवः मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजते माम बुद्धा भाव समन्वितः। अब भगवान कहते अहम सर्वस्य परभवः, मैं सबका प्रभव कहते हैं पैदा करने को। दे ऑल आर कमिंग फ्रॉम मी, मैं सबको ही उत्पत्ति करता हूं। प्रभव का मतलब है उत्पत्ति करना। तो जो कुछ भी आपको इस दुनिया में दिख रहा है ये सब मुझसे निकला है। अहम सर्वस्य प्रभव, जो कुछ भी आपको देवी दिखता है, देवता दिखता है, संत दिखता है, साधु दिखता है, चोर दिखता है, डाकू दिखता है, ये निकले सब मुझसे। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः, मत मतलब मेरे द्वारा, सर्वम प्रवर्तते। प्रवर्तते का मतलब होता है जो कुछ कर रहे हैं ये भी मैं जब इनको प्रेरणा देता हूं तब करते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, किसी जन्म में हमने बहुत कुछ करने का सोचा लेकिन कर नहीं पाए, शरीर छूट गया तो मन के अंदर वो इच्छाएं पड़ी होती हैं। दूसरा शरीर मिलता है तो भगवान हमारे साथ आता है और कोई नहीं आता है, और मन हमारे साथ होता है तो मन की जो अनफुलफिल्ड डिजायर हैं, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई हैं, हमको तो भूल गया हमने क्या किया था, लेकिन भगवान याद कराता है कि ये आपको करने की इच्छा थी इसलिए करो। प्रवर्तते का मतलब आई इंस्पायर देम टू डू। अहम सर्वस्य प्रभव मत सर्व इति मत्वा भजते माम। अगर कोई ये जान लेगा कि तुम्हारा जन्म भी मुझसे हुआ, तुम चल भी मेरे सहारे रहे हो, तो ऐसा व्यक्ति मेरा भजन करेगा। भजन का मतलब क्या होता है? भजन शब्द का अर्थ होता है सेवा। संस्कृत में भजन शब्द से भक्ति बनता है आगे चल के, और उसका अर्थ होता है सेवा। भजन का माना है सेवा। भजन का मतलब गाना नहीं है, सेवा है। भजते माम मेरी सेवा करते हैं, तो क्या आपकी सेवा करते हैं कुछ उनको चाहिए? नहीं नहीं। बुद्धा का मतलब दे आर एनलाइटेंड। वो सेवा क्यों करते हैं? वो इसलिए सेवा करते हैं, वो समझते हैं कि मैं ही उनको पैदा करने वाला, मैं ही उनको चलाने वाला। जैसे हमारे वेद में मंदिर में सब जाके कहते हैं तुम्हें वह माता च पिता तुम्हें वह बंधु च सखा तुम्हें वह। ये जो मंत्र है इसका अर्थ है सब कुछ भगवान आप हो। तो यहां इसी का भाव है कि भगवान सब कुछ, भगवान कहते मैं आपका पिता, मैं आपका माता, मैं आपको पालन करने वाला, मैं आपको चलाने वाला, सब कुछ मैं हूं। तो लोग कहते हैं जो इतना सब मेरे को कर रहा है उसकी तो सेवा करनी चाहिए ना, तो प्रेम होना चाहिए ना। एक आजकल की पढ़ाई वाला लड़का था, हॉस्टल में रहता था, छुट्टी पे घर आया तो मां ने कह दिया कि बेटा तुम थोड़ा लान बड़ा हो गया है, घास काट दो। तो बेटे ने घास काट दिया। बोला कपड़े कुछ पड़े हैं, इस्त्री कर दो। इस्त्री कर दिए। बोलो बाजार से कुछ सामान लेके आए, लेके आ गया। और आफ्टरनून को, दोपहर को जब भोजन के लिए बैठा तो एक बिल रख दिया टेबल के ऊपर माँ के लिए कि घास काटने के 50 रुपये, आयरन करने के 70 रुपये और बाजार में गया उसके सब मिला के 150 रुपया। तो माता जी ने पर्चा उठाया लेकिन बोली कुछ नहीं। रात को माता जी ने एक चिट्ठी लिखी डिनर की टेबल पे, भोजन पे, बेटा तुम्हारे जन्म से तुम्हारे कपड़े धोती आ रही हूं, तुम्हारा बिस्तर बनाती आ, तुम्हारा भोजन खिलाती हूं, पता है क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूं। वो बच्चे का दिमाग में लगा कि मेरी मां इतना कुछ करती है प्रेम से और मैंने 3 काम किए उसका भी पैसा मांगता हूं, और पैसा ही मां से लेके आऊं, पढ़ने के लिए पैसा मां देती है, हॉस्टल में पैसा मां देती है, खाने का पैसा मां बाप देता है, लेकिन उसको बिल दे रहा है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे जो जानते हैं बुद्धिमान कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूं तो वो मेरी सेवा करते हैं काय से, तो ये शब्द है भाव। भाव शब्द का मतलब है प्रेम, कृष्ण भावना अमृत संग। भाव शब्द का मतलब है प्रेम से पहले वाला स्तर, जैसे सुबह सवेरे सूर्य उगता है ना, उससे पहले रोशनी हो जाती है तो पता लगता है अब सूर्य उगने वाला है। तो प्रेम प्रकट होने से पहले स्तर जो है उसको भाव बोलते हैं। भाव प्रेम, बस प्रेम प्रकट हो ही गया समझ लो, तो भाव मतलब प्रेम, क्योंकि मुझसे उनको प्रेम है, क्योंकि मैं, वो जानते हैं बुद्धा बड़े बुद्धिमान है, इंटेलिजेंट है, उनको ये समझ में आ गया है। तो बुद्धा, एक होता है बुद्धा, दूसरे होते हैं बुद्धू। दुनिया में बुद्धू ज्यादा है, बुद्धा कम है। बुद्धू का मतलब है पागल, हाँ पागल है ज्यादा, वो भगवान का भजन नहीं करते, वो सेवा करते हैं, सेठ की सेवा करते हैं, नौकरी करते हैं उसकी सेवा करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं, बिल्ली की सेवा करते हैं, घर में पाल के रखते हैं, लेकिन भगवान की सेवा, बोलो, बोला गार्ड की सेवा, बोला नहीं डॉग की सेवा करेगा। हाँ, तो ये डॉग कॉन्शियस सोसाइटी हो गई, गार्ड कॉन्शियस के बजाय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गोस्वामी प्रभुपाद कहते थे The only scarcity in the world is lack of God consciousness. एक ही चीज का दुनिया में अभाव है, केवल भगवान की भावना का, भगवान के प्रेम का, बाकी सब चीजें। प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा ऑस्ट्रेलिया में, स्वामी जी पानी कम हो जाएगा कहां से पियेंगे, अभी भी 25 रुपये का बोतल लेके पी रहे हैं, 25 रुपीज का लीटर, 1.5 लीटर लेके पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। प्रभुपाद ने कहा कौन बोला है पानी कम खत्म हो जाएगा, 3/4 धरती के ऊपर समुद्र है, भगवान ने प्रिजर्वेटिव डाल के पानी को प्रिजर्व करके रखा है, क्या समुद्र कभी सूख जाएंगे क्या? हाँ, ओशन ड्राई होगा क्या? नहीं ना। और जब भगवान की इच्छा होगी, 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं जब मैं चाहूं वर्षामी निग्रामी च, पहले मैं गर्मी से समुद्र से पानी को मीठा बना लेता हूं और फिर बरसात कर देता हूं, तो कभी समुद्र सूखेगा क्या? तो कैसे पानी कम होगा? भगवान उसको बादल से मीठा बना के बरसा देंगे, लेकिन फिर कहते मेरी मज इच्छा है बरसात करूं या ना करूं। कब करोगे? बोलो जब ये यज्ञ करेंगे तब मैं बरसात करूंगा। बोलो कौन सा यज्ञ करेंगे? बोलो कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो बरसात करेंगे। मेरे को 4-5 साल पहले हम यहां मॉरिशस में आए थे तो कम बहुत बरसात हुई थी, लोग कह रहे थे पानी के रिजर्वायर कम हो रहे हैं, तो कथा कीर्तन शुरू हुआ, कीर्तन शुरू हुआ, बरसात शुरू हो गई, फिर तालाब भर गए। प्रभुपाद जी ने ऐसे गए थे आंध्र प्रदेश में, हैदराबाद में, तो बड़ा अकाल पड़ा हुआ था, किसान परेशान थे, भक्तों ने नगर कीर्तन किया और बरसात आना शुरू हो गई। तो ये यज्ञ है, हम यज्ञ करेंगे भगवान बरसात करेंगे, और ये पानी का कभी अभाव नहीं, किसी चीज का भी कमी नहीं आ सकती है। जो चीज भगवान से निकलती है वो कैसे कम हो सकती है? भगवान अनंत है तो उससे अब निकली हुई चीजें अनंत है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि दुनिया में कोई चीज कम हो जाएगी। हाँ, कम हो जाएगी इसलिए कि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो वो चीजें हमको मिलेंगी नहीं। बुद्धा का मतलब है एनलाइटन, एनलाइटन का मतलब है जिन्होंने भगवान को समझने की, उसके भजन की, भजन शब्द का मतलब होता है भक्ति, भजन ते माम मतलब भक्ति, और भक्ति के अंदर दो अंग होते हैं प्रेम और सेवा। हम भगवान से प्रेम करते हैं उसको दिखाएंगे कैसे, जिससे हम प्रेम करते हैं, और सेवा करने से ही पता लगता है कि हम प्रेम करते हैं। इफ यू लव समबडी देन वी कैन ओनली नो व्हेन यू सर्व। सेवा से प्रेम का प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन मीन्स यू कैन शो दैट आई लव समबडी बाय सर्विंग समबडी। प्रेम दिखाने का तरीका है सेवा। बुधा भाव, भाव का मतलब प्रेम, समन्वित, 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 समन, समन का मतलब है कंप्लीट। श्री प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है विथ ग्रेट अटेंशन, समन्वित। वो सेवा करते हैं, वो प्रेम उनके अंदर प्रकट होता है, तो क्या वो अपनी सेवा और प्रेम को अलग अलग जगहों में बांट देते हैं? बोलो नहीं, फोकस्ड ऑन वन थिंग। वो बहुत ग्रेट अटेंशन का मतलब है कंप्लीटली फिक्स्ड, उनका मेरे ऊपर केंद्रित होते हैं। बोला कैसे केंद्रित होते हैं, कैसे पता लगे आपके ऊपर केंद्रित है, आपके ऊपर फिक्स हैं, आपसे प्रेम करते हैं, आपकी सेवा करते हैं, पता कैसे लगे? तो इसके अगला श्लोक है, आप पढ़िए। मत चित्त मदगत प्राणा, बोलिए, बोधयन्तः परस्परम् कथ्यन्तश्च माम् नित्यम् तुषन्ति च रमन्ति च। आप भगवान कहते हैं जिनका मन मुझ में लग गया है, जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं, वो कैसे पहचाने जाते हैं? तब कहते हैं मच्चित्ता। मच्चित्ता, मद का मतलब भगवान श्री कृष्ण, मैं कहते हैं, मैं का मतलब कृष्ण, और चित्ता एक चित्त का अर्थ है जिनकी चित्त की वृत्ति, चित्त की वृत्ति। योग शब्द जो है ना, उसका पतंजलि कहते हैं चित्त वृत्ति निरोध योग उच्यते। चित्त की वृत्ति को रोका जाए उसको योग कहते। तो चित्त का मतलब है मद चित्ता, जिसका मन मुझ में लगा हुआ है। ये चित्त शब्द 12वें अध्याय में भी आएगा, मद चित्ता, वहां मद चित्ता शब्द है, जिसका चित्तमय आवेश, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है। ये चित्त का अर्थ है जो जिसका सारा दिन सोच विचार मेरे ऊपर केंद्रित है, उसका मन मेरे ऊपर फोकस्ड है। और दूसरा चित्त का अर्थ है चित्र, ये चित्र है ना, सारे फोटो, इसको भी चित्र कहते हैं। मद चित्त का हमको ऐसा लगता है बहुत अच्छा अर्थ कि जिन्होंने अपने हृदय में मेरे सुंदर श्याम सुंदर चित्र को बना के रखा है, जिसके दिल में मेरा फोटो लगा हुआ है, ये मच्चित्ता का अर्थ है। भक्त वो जिसके हृदय में हर समय भगवान दिखते रहे। किसी ने बोला ऐसे भक्त का उदाहरण दीजिए, तो हमने कहा हनुमान जी छाती खोल के सीताराम दिखाया कि नहीं दिखाया? तो मद चित्ता का उदाहरण है हनुमान, मद चित्ता का उदाहरण हनुमान है, मद चित्ता का उदाहरण है मन मना गोपियां। वो कहते मन हमारे पास है ही नहीं, वो तो कृष्ण के पास है। तो ये जो स्तर है मद चित्ता वाला, ये हनुमान की दास्य भक्ति का है। एक बार अर्जुन द्वारका में सोए हुए थे, तो किस बोला के जाओ उसको बुला के आओ, तो कोई गया उधर बुलाने के लिए, पहला व्यक्ति, तो उसके रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहे, तो उसको आश्चर्य लगा, वहीं खड़ा हो गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को कहा तुम जाओ बुला के आओ अर्जुन को, तो रुक्मणी बुलाई तो उसने देखा तो वो भी आश्चर्य में वहीं खड़ी हो गई कि ये क्या है, सोया है लेकिन इसके रोम रोम से कृष्ण 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 यही उच्चारण हो रहा है, वो नींद में। नारद जी आए थे, उसको भेजा, उसको तो इतना आनंद आया, वो तो बजा के वीणा और कीर्तन करने लग गया। भगवान श्री कृष्ण का अभी तक कोई आए नहीं, सबको भेजता हूं उधर ही जाके बैठते, हुआ क्या, आके देखें तो ये कीर्तन कर रहे हैं, और कृष्ण आंख खोले उठा तो सबने कहा ये तुम लोग यहां इकट्ठे क्यों हो, क्या हुआ है? तो सब लोग कुछ बस कुछ बोल नहीं रहे हैं। भगवान ने पूछा आप देर से देर क्यों लगाई? बोला ये सोया हुआ है लेकिन इसके रोम रोम से कृष्ण 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 निकल रहा और कुछ नहीं निकल रहा, ये हो गया मस्जिद तक। वो नींद में सोया है तो भी कृष्ण उसके मुख से निकलता है, जागा है तो कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। एक बार जब उद्धव आए थे ब्रज में तो गोपी एक को देखा कि वो पानी भरने के लिए मटका सर के ऊपर रखा था और बच्चा गोद में लिया था और वेल में कुएं में पानी भरने जा रही थी, तो रस्सी थी, रस्सी मटके में रस्सी डाल के कुएं में डालना चाहिए ना डब्बे में, वो इस पेड़ को देख रही है, पेड़ को देख रही है, रस्सी गले बच्चे बेटे के गले में रस्सी डाल दी और बेटे को कुएं में डाल रही है। तो उद्धव ने कहा ये गोपी तो पागल हो गई है, अरे मैं तो बर्तन में लट तो बाल्टी में रस्सी बांधो ना, बेटे के गले में बोला। वो कृष्ण बांसुरी बजा रहा है पेड़ के ऊपर, अब कृष्ण की बांसुरी में इतना मत चित्ता है कि बेटे के गले में रस्सी डाली है कि बाल्टी में पता नहीं लगा। ये मत चित्ता की परिभाषा है। मत चित्ता का अर्थ है कभी भी थोड़ी देर के लिए भगवान का नाम रूप लीला धाम उसको भूलते नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर ऑल दीज फोर थिंग्स। प्रभुपाद जी इसको कहते थे जब हृदय शुद्ध हो जाएगा ना तो हृदय टेलीविजन बन जाएगा, इसके ऊपर भगवान की लीलाएं चलती रहेंगी कंटिन्यूअस जैसे सीरियल आते हैं। मत्चित्ता की प्रभुपाद से एक्सप्लेनेशन इज द हार्ट बिकम दूरदर्शन, हार्ट बिकम टेलीविजन एंड कृष्ण स्पेंड पास्ट टाइम्स कंटिन्यूअसली मैनिफेस्ट देयर। ऐसे रूप गोस्वामी की जीवनी में देखते हैं कि उनके हृदय में वो देख रहे थे कि कृष्ण को राधा रानी कहती है ये ऊपर से हमारे को फूल दे दो, और फूल के लिए डाली को नीचे किया और भगवान ने राधा रानी ने डाली को पकड़ लिया और भगवान ने डाली छोड़ दी और राधा रानी डाली में लटक गई। तो ये वो तो उनके हृदय में ये सब चित्र दिख रहे थे। इसलिए भगवान की जो लीलाएं हैं दो प्रकार की होती, एक भगवान की लीला को कहते हैं वास्तविक अप्रकट लीला, वास्तविक मीन्स कंटिन्यूअस ऑलवेज और अप्रकट मीन्स अनमैनिफेस्ट, वो जो तो नित्य लीला है। और दूसरी भगवान की लीला को कहते हैं व्यवहारिक, व्यवहारिक प्रकट लीला। व्यवहारिक मीन्स जब भगवान अवतार लेते हैं उस वक्त जो लीला करते हैं उसको कहते हैं व्यवहारिक प्रकट लीला। तो जो भागवत आदि में भगवान की लीला है वो व्यवहारिक लीला है, प्रकट लीला है, लेकिन इससे ज्यादा अनंत लीलाएं हैं जो भक्तों के हृदय में प्रकट होती हैं। कौन से भक्तों के? मत्चित्ता, जिनके हृदय में भगवान के लीलाओं का ऐसे नई नई लीलाएं ऐसी सुनेंगे भक्तों से कि आश्चर्य लगेगा। ये सनातन गोस्वामी पाद का थोड़े दिन पहले तिरुभाव तिथि है, वो रूप गोस्वामी से मिलने गए, वो लिख रहे थे राधा रानी की जब वेणी बनाती है, वेणी का मतलब जो चोटी बनाती है वो तो सांप जैसी लगती है। सनातन गोस्वामी ने कहा ये कैसे लिखा है, राधा रानी के चुटिया जो है वो सांप जैसी है। मन में थोड़ा संकोच हुआ, वहां से निकले और सामने देखा एक बच्ची झूले में झूल रही है स्विंग में, और अचानक देखा कि उसके बाल जैसे आ गया है। सनातन गोस्वामी को लगा कि ए लाली लाली तेरे को सांप ऊपर स्नेक स्नेक, जाके देखा तो लड़की हंस रही है, बोला ये तो बाल है मेरे। तो राधा रानी ने वो उनको जो लिखा था वो दिखा दिया। तो ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जिनका भागवत में वर्णन नहीं है, लेकिन मदचित्ता जो भक्त है उनके हृदय में ऐसी लीलाएं भगवान दिखाते रहते हैं। लेकिन भागवत की प्रकट व्यवहारिक लीलाओं को सुनने से भगवान की नित्य लीला में प्रवेश होता है। अप्रकट लीला वास्तविक लीला है, वो नित्य हो रही है। तो मदचित्ता वो भक्त है जिसके हृदय में भगवान की ऐसी दिव्य लीलाएं चल रही हैं और उनकी हृदय में भगवान की चार चीजें नाम रूप धाम और लीला, ये चारों के चारों नित्य निरंतर उनके हृदय में दिख रही होती हैं। इसलिए आपने देखा है जिससे हम प्रेम करते हैं ना, जिससे दुनिया आप अपने छोटे बच्चे हैं ना, मम्मी पप्पा से प्रेम करते हैं, माता पिता से, फिर क्या करते हैं कि एक छोटा सा लॉकेट बना दो और हार्ट के शेप का, दिल की चेन है, और उसके अंदर एक तरफ मम्मी का एक तरफ पप्पा का फोटो लगाते हैं, गले में डालते हैं, दिखाते हैं दोनों को, देखो हम मम्मा पप्पा से प्रेम करते हैं। और 18 साल से पहले मम्मा पप्पा का फोटो को निकाल के रख के और फिर लड़का लड़की का फोटो टांग देते हैं कि इससे प्रेम करते हैं उस, और जब लड़का लड़की एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देती है तब उनको बेटा होता है, तब उन्हें मेरे बेटे का फोटो लगाता हूँ, आगे चल के बुढ़ापे में काम आएगा। बेटा चला गया तो भगवान हंसता है, मूर्ख में असली फोटो पड़ा तो ऊपर नया क्यों लगा रहा है। आई एम नेचुरली देयर विद इन द हार्ट, व्हाई यू आर पुटिंग सो मेनी नॉनसेंस थिंग्स, क्यों दूसरे फोटो लगा रहे हो, असली फोटो तो अंदर पड़ा ही है, तो नया नया ऊपर लगाने की क्या जरूरत है, असली फोटो तो अंदर भगवान का है चित्र। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में भगवान चतुर्भुज रूप में रहते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु, वो भक्तों के हृदय में त्रिभंग ललित श्याम सुंदर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। भक्तों के लिए भगवान का ये रूप ऐसा लेके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, यही तो ब्रह्म संहिता में हम पढ़ते हैं, प्रेम अंजन सुरित भक्ति विलोचने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम मचित्तम गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषम तमाम। तो मच्चित्ता का अर्थ है जिसकी चित्त में भगवान बसता हो, कृष्ण बसता हो, या मत का मतलब कृष्ण, जिसके चित्त में कृष्ण बसता हो। जिसके चित्त में कृष्ण बसता हो, जिसका चित्त कृष्ण में लगा हो, बोला नहीं हो तो मदगत प्राणा, अगर मेरी स्मृति नहीं रहे, मेरी याद नहीं रहे, मेरा दर्शन नहीं हो तो उसके प्राण निकल जाएंगे, मत गत प्राणा, प्राण निकल जाएंगे। ऐसे भगवान से प्रेम करने वाले हैं कि प्राण निकल जाएंगे। नंद बाबा जब मथुरा कृष्ण और बलराम को छोड़ा और वापस नहीं आए, कृष्ण बलराम जब लौट आए ब्रज में, तो यशोदा मैया ने पूछा कि बगैर खाली हाथ कृष्ण बलराम के कैसे आ गए, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए। नंद बाबा कहते एक ही पिता धरती पे हुआ है, दशरथ महाराज, राम के ना आने का पता लगा तो प्राण निकल गए, वो एक ही पिता धरती पे हुआ है, अगर राम जी वापस नहीं आए ये समाचार मिला तो प्राण निकल गए। दशरथ इसका उदाहरण है, मदगत प्राण। दूसरा उदाहरण है कुंती महारानी, जब अर्जुन ने यह समाचार दिया युधिष्ठिर महाराज को कि भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए हैं, कुंती महाराज ने, महारानी ने यह सुना और प्राण छोड़ दिए, बोला कृष्ण नहीं तो प्राण नहीं, इसको बोलते हैं मदगत प्राण। भगवान की स्मृति, हरिदास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अब मैं सुमरण नाम का नहीं कर रहा हूं, अब इस वक्त अब मेरे को जीने की इच्छा नहीं है, और भगवान के चरण पकड़ के और मुख का दर्शन करते हुए प्राण दे दिया। ये मदगत प्राण है कि अगर भगवान के नाम नहीं जप रहा है तो जी के क्या करेंगे, खा के क्या करेंगे, सो के क्या करेंगे, चल के क्या करेंगे। भगवान की स्मृति नहीं है तो जी नहीं, जो खिला रहा है, पिला रहा है, चला रहा है, उसकी याद नहीं है तो जी के क्या करें। तो मत चित्ता मदगत प्राणा, बोला आखिर ये भक्त जीते कैसे हैं, आखिर ये भक्त जीते कैसे हैं, बोला बोधयंत परस्परम, वो जीते हैं क्योंकि कथा मेरी सुनते और सुनाते, ये मेरी कथा ही उनका जीवन है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, ये गोपियां कहती है भगवान तुम्हारी कथा ही ऐसी है जो हमारा जीवन चल रहा है, नहीं तो ये जीवन कब का छूट गया होता। अगर कृष्ण कथा नहीं, हरि कथा नहीं, तो जीवन कैसे टिका के रखेंगे भक्त। ये कथा प्रभुपाद जी कभी कभी कहते थे, ये पुस्तक वितरण करते हो तो मेरी शरीर में जैसे खून चल रहा है, ये आप बंद कर देते तो मेरा प्राण खत्म हो जाएगा। इसका मतलब भगवान के प्रचार के कार्य को रोकने के बाद जीने की कोई इच्छा नहीं है। तो कैसे जीते हैं, बोधयंत परस्परम, परस्परम का मतलब है एक कथा सुनाता है दूसरा सुनता है, और जब वो एक थक जाता है तो दूसरा सुनाता है फिर वो सुनता है, ऐसे निरंतर कथा चलती रहती है। ये हमारे छह गोस्वामी वृंदावन के अंदर 3-4 घंटे रोज रघुनाथ दास गोस्वामी चेतना चरितमृत की कथा सुनाते थे, क्योंकि चेतना महाप्रभु की जगन्नाथपुरी की लीलाओं का कोई साक्षी नहीं था, लेकिन रघुनाथ गोस्वामी 16 साल वहां रहे थे और वो बगैर महाप्रभु के और बगैर स्वरूप दामोदर के कहते गोवर्धन से कूद के प्राण दे दूं, जमुना में डूब जाऊं, मैं जीने नहीं चाहता हूं, मदगत प्राणा। तब कह दिया गोस्वामी ने, आप कथा कीजिए, हमको चेतन महाप्रभु की लीला सुनाइए। रोज 3-4 घंटे कथा चलती थी और वो कथा पूरी होती थी तो गोपाल भट्ट गोस्वामी भागवत की कथा शुरू कर देते थे। तो ये कथा ही जीवन है इन गोस्वामियों का। सार क्या? सारा दिन हरि कथा, हरि कीर्तन, कथा कीर्तन, सुमरण जप और कोई काम नहीं। तो ये जो बोधयंत परस्परम बार बार कथा करते हैं, कम से कम भागवत कथा सुबह भागवत का तो श्रवण करना ही चाहिए, क्योंकि निष्ठा वाली भक्ति तत्काल हो जाएगी। नहीं तो प्राय भक्त लोग अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी एक जीवन लग जाता है अनर्थ निवृत्ति में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि अश्रद्धा तो हो गई, साधु संग हो गया, भजन क्रिया हो गई, दीक्षा हो गई, लेकिन अनर्थ निवृत्ति में बहुत समय लगता है, निष्ठा तक पहुंचने में तो क्या करना चाहिए? बोला रोज भागवत सुनो तो भक्तिर भवती नैष्ठिकी, और निष्ठा वाली भक्ति तत्काल आ जाएगी, एकदम निष्ठा तक पहुंच जाएंगी, बहुत आसान है। इसलिए भागवत का श्रवण का नियम बनाना चाहिए, क्योंकि भागवत भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, भागवत और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या करते हैं? बोधयंत परस्परम कथ्यंतश्च माम नित्यम, कथ्यंतश्च माम नित्यम। कथ्यंतस मतलब कथा करते, माम च का मतलब है कीर्तन, कथा कीर्तन दोनों, तो श्रवण कीर्तन हो जाएगा। माम का मतलब कृष्ण का और नित्यम का मतलब प्रतिदिन रोज नित्य, नित्यम भागवत सेवया, ये नित्य है, वो नित्य कथा करते हैं। कथ्यंतश्च नित्यम, ऐसा नहीं एक बार 3-4 घंटे करते हैं फिर महीना एक छुट्टी, नहीं, ऐसे भागवत कथा के लिए स्कंद पुराण में लिखा है एक कथा सतोगुण की होती है, एक कथा भागवत की रजोगुण की होती है, एक तमोगुण की होती है, एक त्रिगुण अतीत होती है। सो पहली कथा, बोला तमोगुण की कौन सी होती है? बोला एक दिन कथा सुने, फिर 15 दिन छोड़ दे, फिर एक दिन आगे कथा सुने, कभी एक चैप्टर खोले, कभी तीसरा, इसे बोलते तमोगुण का प्रायण। बोला रजोगुण की कौन सी होती है? बोला बड़ा पंडाल बनाए, लोगों को कथा करे, कथा स्वयं न सुने, सिर्फ काम में लगा रहे दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ी कथा की, इंडिया में ऐसी बहुत कथाएं होती है, ये रजोगुण की है। बोला सतोगुण की कौन सी कथा है? बोला कम से कम 15 दिन महीना भागवत का प्रायण करे। बोला त्रिगुण अतीत कौन सी कथा है? क्या करना है? हरे कृष्ण, क्या है? माइक्रोफोन चेंज करना है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। तो निर्गुण कौन सी है? निर्गुण का मतलब बियॉन्ड 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। बोला रोज नित्य नेम से भागवत पढ़ता रहे। और जो प्रभुपाद जी ने हमारे मंदिरों के अंदर भागवत का नेम बनाया है, ये निर्गुण प्रायण है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, इसमें कुछ पाने के लिए नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, चलता रहता है, ये दिव्य है, इससे भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो मिलता क्या है कथा करने से इनको? तब कहते हैं तुष्यंती, तुष्यंती का मतलब है संतुष्ट हो जाते हैं। तुष्यंती का मतलब दे आर सेटिस्फाइड। अरे आप प्रसाद अभी थोड़ी देर के बाद मौजे, फिर तुष्यंती और फिर सो गए। हमारा जनरली तुष्यंती का मतलब प्रसाद खाया, पेट भर गया और दौ में सो गया। मौजे दो में, पर हम कहते नौ इंच डन से। ये क्या करते हैं, तुष्यंती च रमंती च, रमंती का मतलब होता है आनंद में मगन होके रमण करते। रमण का असल में ये है भगवत प्रेम का उत्पन्न हृदय में हो जाता है। ये प्रयोजन तत्व है कि उनके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है। रमंती का मतलब जैसे राधा रमण है, ऐसे रमंती का मतलब है वो आनंद में मगन होकर नृत्य करने लगते हैं। ऐसे पूछा लक्ष्मण ने, पूछा था राम जी से चित्रकूट में कि आपको सरलता से कैसे पाया जाए, तो राम जी ने उत्तर दिया, मन मम गुण गावत पुलक शरीरा नयन बहे नीरा। जब मेरा कोई कीर्तन करे तो सारा शरीर पुलकित हो जाए, रोमांच हो जाए और आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगे। ऐसे भक्तों के अंदर जब छल कपट नहीं है, कपट नहीं है, उनको मैं सदा तत्काल मिलता हूं। ऐसे ही मुझको पा सकते हैं, यही भक्त मुझे पा सकते हैं। आचेतन महाप्रभु ने यही बात कही है, नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद रुद्धया गिरा, गला रुंध जाए नृत्य करने लगे। ऐसा एक भक्त भी हो, भागवत लिखती है, एक भक्त भी ऐसा हो, रुदंती गायंती क्वचित, कभी रोता है कभी गाता है बड़े स्वर में, नृत्यंती च और नृत्य करता है, पुनाति भुवनम, पूरे भूमंडल को पवित्र कर सकता है। 70 साल के बाद प्रभुपाद जी कीर्तन में नाचते थे और वो उनका नृत्य पूरे इस पूरे वर्ल्ड को प्यूरिफाई किया कि नहीं किया, एक व्यक्ति ने, दिस वन पर्सन। ये तो किताब लिखा अच्युतानंद स्वामी ने, ब्लेजिंग साधु, द वन हु कैन नॉट डांस कैन नॉट बी अ डिवोटी। प्रभुपाद 70 साल में ही वॉज जंपिंग लाइक दैट डांसिंग। वो उनका डांसिंग जो था वो क्या था, आनंद में, ही हैज प्यूरिफाई द होल वर्ल्ड। जहां जहां कीर्तन हुआ वहां कितना बड़ा परिवर्तन हुआ, लोगों का हृदय बदल गए। तो एक भी भक्त ऐसे करेगा तो भगवान का आनंद मिलेगा। बोला ये तो भक्त करेगा सारा, भगवान क्या करेंगे। तो आगे के श्लोक में भगवान क्या करेंगे, आइए इसको सुनते हैं, बोलिए। तेषां सतत युक्तानां भजताम प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगं तम् येन माम उपयान्ति ते। अब तेषां शब्द का यह अर्थ है मच्चिद मद्गत प्राणबोधयन्त परस्परम्। ऐसे भक्त जिनके चित्त में मैं निवास करता हूं, जिनका चित्त सदा मुझ में रमण करता है और उनकी मेरी कथा नहीं सुनेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और संतुष्ट होके आनंद में मगन होके रमण करते हैं, ऐसे भक्तों को उनकी विशेषता क्या है, सतत युक्तानाम। एक सतत का अर्थ होता है सतत, सदा के लिए, ऑलवेज। सतत का मतलब एक है ऑलवेज। और एक महात्मा बड़ा आनंद से कहते थे सतत, स का मतलब साथ, तत का मतलब तार, जैसे नारद जी वीणा बजाते हैं, नारद जैसे भक्त जो सदा कीर्तन करते रहते हैं। भगवत गीता में लिखा है महात्मा की पहचान क्या है, सततम कीर्तन यंतो माम, सततम, वो सतत का मतलब है सदा कीर्तन करने वाला, सततम कीर्तन यंतो माम यततंश्च दृढ़ व्रता। ऐसा जो व्रत लेते हैं कि निरंतर हम कीर्तन करते रहेंगे। अर्ली डेज में इस्कान के भक्त 8 आवर्स से डे कीर्तन करते थे, राउंड अबाउट किसी अच्छे बड़े शहर के ऊपर 8 आवर्स विष्णु जन महाराज 8 आवर्स कीर्तन करते थे। ये कीर्तन से इस मूवमेंट का जन्म हुआ है। चैतन्य महाप्रभु कीर्तन के लिए आए थे, तो यहां जो शब्द सतत है उसका अर्थ लेना चाहिए कीर्तन करता है। सततम कीर्तन यंतो माम, इसका अर्थ ये बहुत अच्छा रहेगा। ये सततम का अर्थ है सततम कीर्तन यंतो माम, ऐसे भक्त जो है सतत। युक्ता नाम का मतलब सेवा में लगे हुए हैं। सेवा, युक्त का मतलब है जुड़ना। भगवान से कैसे जुड़ेंगे? बोला सेवा से। सेवा से जुड़ेंगे तो क्या मिलेगा? प्रेम। भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम से मेरा भजन करते हैं वो, मेरी सेवा करते हैं, मेरा नाम जपते हैं प्रेम से। किसी कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ मुझसे मांगने के लिए नहीं, प्रेम से मेरा प्रीति पूर्वकम मेरा भजन करते हैं, ऐसे उनको क्या करता हूं? ददामी बुद्धि योगम तम। बुद्धि भगवान ने सबको दी है, कहां रोटी है जाके खा लो, कहां कपड़ा है पहन लो, कहां घर है सो जाओ, ये तो सबको बुद्धि भगवान ने दी। बुद्धि योग सबको नहीं दिया। बुद्धि योग का राइट रिजर्व रखा है भगवान ने अपने पास, वो किसी किसी को देता है जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाता है, जिसके ऊपर व्हेन ही इज प्लीज विद समबडी देन ही गिव्स बुद्धि योग। सबको नहीं देता है, बुद्धि सबको देता है, बुद्धि योग सबको नहीं देता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बुद्धि एंड बुद्धि योग। तो बुद्धि योग किसको देता है? मुझे जो निरंतर कीर्तन करते हैं, मेरी सेवा में लगे हैं प्रेम से, उसको मैं बुद्धि योग देता हूं। ददामी का अर्थ होता है वो मांगता नहीं है। आपने कभी देखा है बच्चे किसी के घर में जाते हैं रिलेटिव के, तो रिलेटिव कहता है ये टॉफी खा लो, बोलता नहीं, मां ने कहा होता है नहीं मांगना। किसी को देनी होती है वो जबरदस्ती उसकी जेब में डालता है, यू नो, इफ दे वांट टू गिव देन दे विल पुट बाय फोर्स इन देयर पॉकेट, अगर देना चाहेंगे तो। ऐसे भगवान ददामी का अर्थ है भक्त मांगते नहीं है लेकिन भगवान जबरदस्ती उनको बुद्धि योग देता है, फोर्सफुली देता है। एक बच्चा था छोटा, मां के साथ अंकल के दुकान पे गया। अंकल ने कहा बेटा टॉफी ले लो, बोला नहीं, बोला ये चॉकलेट ले लो, नहीं। मां बड़ी खुश हुई कि बेटा नहीं ले रहा है। जब जाने लगा तो अंकल ने मुट्ठी भर के कोई चॉकलेट दे दिया, तो बच्चे ने दोनों हाथ में ले लिया। तो मां ने अंकल दोनों ने पूछा कि तुमको कहा उठा लो तुम ले नहीं रहे थे, अब जो अंकल ने दिया ले क्यों रहे? बोला मैं उठाता तो मेरे हाथ में 4-5 आते, छोटा हाथ था, कितना उठा सकता। अब अंकल देगा तो अंकल के हाथ से देगा तो इतनी सारी आ गई ना, तो मैं कहां से उठा सकता हूं अपने आप। तो भगवान जब देते हैं तो भगवान के हाथ से देंगे ना, हम मांगे तो हमारे अकल से मांगेंगे, हमारी बुद्धि से मांगेंगे, और भगवान अपनी बुद्धि से देंगे। तो ददामी का मतलब है भगवान अपने इच्छा से जब देते हैं तो वो तो ऐसा था ये नमाम उपयान्ति ते, उसके द्वारा वो मेरे पास चला आता है। कैसा बुद्धि योग देते हैं? बोला एक ऐसा उसको लिफ्ट देता हूं या ऐसा फ्लाइट देता हूं, वो सीधा मेरे पास आएगा, नॉन स्टॉप बैक टू गॉड हेड, वो गोलोक धाम की उसको फ्लाइट का टिकट देता हूं। ददामी बुद्धि योगम का मतलब है गोलोक धाम का जो टिकट देता हूं, जो विमान में, जो कहीं वैकुंठ में भी रुकेगा नहीं, सीधा ऊपर आएगा। हाँ, इस श्लोक का अर्थ ये है कि प्रेम से अगर भगवान का भजन करेंगे तो भगवान भगवत गीता के 12वें अध्याय में कहते हैं भवामी निचरात पारथ मई आवेशित चेत साम, मई आवेशित चेत साम, जिसका चित्त मुझ में आविष्ट है, जो मत चित्ता है उसको मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु संसार से मैं अपने आप उठा के ले जाता हूं। ऐसे माना जाता है कि सोल अपने आप चल नहीं सकता है, ये माना जाता है सोल के कारण शरीर चल रहा है लेकिन सोल अपने आप नहीं चलता है। जैसे बैटरी के बगैर गाड़ी नहीं चलती है लेकिन बैटरी अपने आप नहीं चल सकती, यू बैटरी कैन नॉट वॉक बट कार कैन नॉट रन विदाउट बैटरी। तो सोल के बगैर शरीर नहीं चलता है, लेकिन सोल को यहां से जब जाना होता है, पापी को यमदूत लेने आते हैं और धर्मात्मा को वैकुंठ के भगवान के पार्षद लेने आते हैं, तो जाने के लिए लेने आते हैं सबको, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे भक्त को तो मैं स्वयं लेने आता हूं, भवामी निचरात पार्थ मई आवेशित चेतसा, मैं ही आके उसको ले जाता हूं, उसको तो मैं खुद लेने आ जाता हूं, स्वयं लेने आ जाता हूं, तो वो मेरे पास कैसे आएगा? तो भगवान कहते मैं ही उसको लेने आ जाता हूं। ऐसे कहते तो तुकाराम भक्त जो महाराष्ट्र के हुए, वो तो वैकुंठ से विमान भगवान लेके आए उसको लेने के लिए। वैसे ध्रुव महाराज आदि के लिए विमान के ऊपर नंद सुनंद जो विमान के चलाते हैं वैकुंठ के, वो आए, लेकिन गोलोक धाम भगवान उंगली पकड़ के स्वयं ले जाता है, स्वयं आता है लेने के लिए। ऐसे भक्तों ने अनुभव बताया जीवन में कि सामने राधा कृष्ण बुला रहे हैं, अब हम जा रहे हैं। ऐसे भक्तों ने अंतिम समय के अनुभव बताए हैं कि हमको अब बुला रहे हैं, हम जा रहे हैं, बस हमारा यहां का टाइम खत्म हो गया। सो इसका अर्थ है, अब कोई कहे कि मैं मेरा मन नहीं लग सकता है, मैं क्या करूं, मैं तो भगवान की भक्ति में लग गया हूं, लेकिन अभी भी इतना मुझे कथा में रुचि नहीं है, लेकिन भक्ति तो करनी है, अंदर से अभी भगवान प्रकट नहीं हुए। तब भगवान ने ये चौथा श्लोक बोल दिया, तेषाम एवानुकंपार्थम अहम अज्ञान जमत्तमः नास्यामि आत्म भाविस्तो ज्ञान दीपेन भास्वता। अब भगवान कहते हैं ऐसे लोग बिचारे जो अपना प्रयास नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अज्ञानता अभी तक उनकी नाश नहीं हुई है, इग्नोरेंस है। अनुकंपा, तेषाम एव अनुकंपा, अनुकंपा का क्या अर्थ है? वैसे अनुकंपा का अर्थ है बीइंग मर्सीफुल टू देम, लेकिन शब्द का अर्थ है, कंपा का मतलब कांपना, अनु का मतलब कोई चीज देख के, आप अचानक देखो कोई आपका रिलेटिव है और उसको बहुत तकलीफ हो रही है तो कांप जाते हैं आदमी, अचानक किसी का एक्सीडेंट देखते हैं या ऐसे किसी का हालत तो कांप जाता है आदमी। तो भगवान कहता है मेरी भक्ति करता है और अभी तक उसका हृदय साफ नहीं है तो मैं कांप जाता हूं, अरे मेरा भक्त है अभी तक ये, इसके हृदय में मैं प्रकट नहीं हुआ हूं, अंधकार पड़ा है अभी तक, तो भगवान कांप। देखो बच्चा भी बड़ा मां बाप से प्रेम करता है, सारा दिन मां को कुछ भी, मां मारेगी तो भी मां को ही चपकेगा, दूर नहीं जाएगा, मां मारती है तो भी मां को ही पकड़ता है और दूर नहीं जाता है। तो ऐसे जो मेरे भक्त हैं वो मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाते, क्योंकि मैंने उनका इतना प्रेम से पालन पोषण मैं करता हूं कि वो मुझे भूल नहीं सकते। और बड़े होते ही बच्चे, छोटे जब होते हैं ना बच्चे तो लड़ाई करते हैं, मम्मा मम्मी मम्मी मेरी है, पापा मेरा है, हाँ मेरी मम्मी मैं मां पापा, झगड़ा करते हैं मेरा है। और बड़े होते हैं ना बोलते ले जा तेरी मम्मी, हे ले जा तेरे बाप को, हाँ इधर से उधर भेज देते हैं। बचपन में जो हृदय होता है वो बहुत शुद्ध होता है। तो यहां चार श्लोकों में भगवान ने अपनी भक्ति का बहुत सुंदर सूत्र बताया है कि हमको कथा सुननी चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, और ये बहुत दुर्लभ मौका मिला है मानव जन्म में। और श्री प्रभुपाद के इस कृष्ण भावना अमृत संग में जो शुद्ध कृष्ण भक्ति का संदेश है वो और कहीं नहीं मिलेगा। बाकी जगहों पे मनोरंजन है, गाना नाचना खाना पीना जय जयकार करके चले जाना, ऐसा तो है, ज्यादा से ज्यादा कोई पूजा पाठ करके स्वर्ग आदि के लिए भोग करने का इच्छा तो है, लेकिन भगवान के प्रेम की कथा कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। ऐसा शुद्ध भगवान का एक ज्ञान है शास्त्र में, उसको कहते हैं भवायिक ज्ञान। डर लगता है, नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, यमदूत पकड़ के ले जाएंगे, आग में डालेंगे, अरे यहां करते हैं। और दूसरा है रोचक ज्ञान, ये करोगे तो स्वर्ग में मिलेगा, अप्सरा मिलेगी, अमृत उधर सोम रस मिलेगा, ये भी लालच वाला है। लेकिन एक है यथारूप ज्ञान, भगवान से प्रेम करो, भगवान आपसे प्रेम करता है इसलिए भगवान से प्रेम करो, ये जो ज्ञान है इसको प्रभुपाद जी कहते हैं साइंस ऑफ लव ऑफ गॉड। ये जो भगवत प्रेम का विज्ञान है ये असल में सोल का धर्म है, आत्मा का धर्म है। आत्मा है ही भगवान का अंश, तो और कहीं सुखी रह नहीं सकता है। जो चीज जिसका अंश होता है वही वापस जाएगा, तभी सुखी होगा। ये नेचर है, ये पत्थर है, धरती का अंश है, कहीं भी फेंको वापस धरती पे आएगा। ये अभी आरती करने के लिए आग जलाओ तो ऊपर जाएगी लाट, क्योंकि सूर्य का अंश है तो ऊपर ही जाएगी। पानी कहीं भी गिराओ समुद्र में जाएगा, क्योंकि समुद्र का अंश है। जो जिसका अंश है वो वहीं जाएगा, तब सुखी होगा। तो जीव भगवान का अंश है, जब भगवान से प्रेम और सेवा करेगा तभी उसको आनंद का अनुभव होगा। दुनिया का तुच्छ सुख उस आनंद के सामने कुछ नहीं है। इसी को ऋषभदेव महाराज ने अपने पुत्र भरत के नाम से पूरे भारत वर्ष के लिए ये शिक्षा दी है, तपो दिव्यम पुत्र का, हे मेरे पुत्रो दिव्य तपस्या करो। क्या करो? शुद्ध, जिसके द्वारा शुद्ध हो जाएगी आत्मा, ब्रह्म सौख्यम अनंतम, अनंत सुख प्राप्त हो जाएगा, जो सुख कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे रामा, हरे रामा, राम रामा, हरे हरे। Anybody has a question or comment? कोई प्रश्न है किसी की जिज्ञासा? श्री प्रभुपाद